ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூஆர் அபவுட் டு லிசன் சாந்தோக்யோபனிஷத் பிரசன்ட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்யானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
பிரம்ம விஜயான கேந்திர ஸ்ரீ கலாசாசனக்கு பஞ்சம பீட்டாதீஸ்வர் பிரம்மலீன சுவாமி பிரேம்பிரி மகாராஜி கே சம்ஸ்மரண சே சம்ஸ்தாபித यह अध्यात्म विद्या भवन मुंबई में प्रातः साध्या प्रवचन कार्यक्रम में विशेष कार्यक्रम है छांदोग्य उपनिषद ब्रह्म ज्ञान यज्ञ. कल तक द्वितीय अध्याय में प्रथम खंड हुआ था संपूर्ण साम की उपासना साधु दृष्टिया. ऐसा जो उपासना करता है उसको साधु धर्म, शोभन धर्म, श्रुति स्मृति अविरुद्ध धर्म सद्गुण प्राप्त हो जाते हैं. और सद्गुण प्राप्त होकर के उसके आगे उसको प्रगति कराते भोग्यत्व उपतिष्ठेयु, अर्थात सद्गुण संपन्न होकर के आगे सन्मार्ग में चलता है, पर ब्रह्म को प्राप्त करता है. साधु दृष्टि विशिष्ट साम की उपासना कही गई. साम में साधु दृष्टि करके उपासना करना है. वो साम कौन है? ये साम में भी उपासना वेद मंत्र है. साम वेद में 1000 शाखा है और ऋग वेद में भी जितने श्लोक है उसमें साम का आरूढ़ करके गान करते हैं. यजुर्वेद में भी साम गान का श्रवण, गान का चिंतन और गान करना, गान में स्पष्ट दृष्टि करनी, ये सब बहुत उत्कृष्ट पलक है. जैसे विष्णु सहस्र नाम, 1000 नाम, नाम का पाठ, नाम श्रवण से भी बहुत पुण्य होता है. ध्यान का फल अलग है. यदि नाम पाठ करते समय अर्थ चिंतन करके पाठ करे तो अधिक फल होता है. और अर्थ चिंतन नहीं करे खाली पाठ का भी फल है. सर्वे विघ्न समयांति गणेश स्तव पाठत, केवल पाठ मात्र का भी फल है. अर्थ चिंतन चिंतन करे तो अधिक फल है. इसी प्रकार साम के भाग का नाम, अलग अलग विभाग, अलग अलग में कैसे दृष्टि करनी, ये सब चिंतन करने से लोक दृष्टि से साम का उपासना. ऐसे साम के उपासना करते करते सारे ब्रह्मांड की दृष्टि करे. सर्वात्मक है ऐसे चिंतन करके, पर ब्रह्म सर्वात्मक है. तो इसे जहां कहां अष्टादश पुराण में जिस किसी देवता की स्तुति की जाती है, अंत में वही माया विशिष्ट है, वही सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, वही सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले, वही सबके नियामक है, ऐसे कहकर के अंत में वही निर्गुण है, निराकार है, मायातीत है कहकर के शुद्ध ब्रह्म आप है और आप अद्वितीय है, ऐसे कहकर के अंत में अद्वितीय ब्रह्म ही कथन करना है. सारे अष्टादश पुराण में यही तात्पर्य. कहीं किस नाम से कहेंगे? कहीं शिव पुराण कहें तो शिव सबसे बड़ा है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उनसे निकृष्ट है. विष्णु पुराण कहें तो विष्णु सबसे बड़ा है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ये विष्णु में भी दो विभाग कर देते हैं, कार्यात्मक कारणात्मक. ऐसे ऐसे करके शक्ति पुराण देवी पुराण में भगवान कृष्ण को कहीं बड़े कहेंगे, कहीं राम को बड़े कहेंगे. सारे ब्रह्मांड नायक माया विशिष्ट चेतना वही ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, वो उनका रूप अलग अलग रूप धारण करते हैं, कभी किस रूप से प्रकट होते हैं. जो माया विशिष्ट चेतना ईश्वर है वो अशरीर है, केवल माया ही उनका शरीर, अन्य कोई शरीर नहीं है. किंतु जब लीला करते, लीला विग्रह धारण करके कभी किस रूप धारण करते, सर्वत्र ऐसे स्वरूप साकार रूप से चिंतन करते करते वहां लेकर के आगे रूप रहित माया विशिष्ट चेतन, माया विशिष्ट चेतन ईश्वर वही उनके अधीन सारे सगुण साकार सब कुछ है. और जो माया विशिष्ट चेतन ईश्वर है उनको क्या कहेंगे? वह ईश्वर है, उनका रूप अलग अलग है, अलग अलग है, तो कहीं किस रूप से लेकर के माया विशिष्ट चेतन ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, सृष्टि तिथि प्रलय करने वाले, जन्माद्य से अतः सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले ईश्वर. और वो ईश्वर कौन है? ब्रह्मा है. ब्रह्मा कहीं कहते थे ब्रह्मा ही सृष्टि करने वाले, किंतु स्थिति करने वाले विष्णु. और प्रलय करने वाले शिव आ गए। ये तीनों मिला करके माया विशिष्ट चेतना कहीं किसी नाम से लेकर के वहीं पहुंचना है। और जो माया विशिष्ट चेतना सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है वो सर्वात्मक है, क्योंकि सारे जगत का कारण जैसे मिट्टी से बने गया घटा सर्वादी सब मिट्टी ही, इसे माया विशिष्ट चेतन ईश्वर उस वही ईश्वर अभिन्न निमित्त उपादान कारण, उपादान कारण भी वही निमित्त कारण भी है। लोक में घट बनाता है कुलाल तो कुलाल होता है निमित्त कारण, मिट्टी है उपादान कारण, किंतु ये जो ईश्वर माया विशिष्ट चेतन उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। माया अंश को लेकर के उपाधि को लेकर के उपादान कारण है और चेतनांश को लेकर के निमित्त कारण है। इसे सर्वात्मक ही ईश्वर का कार्य सारे आकाशादि भूत भौतिक प्रपंच वो सर्वात्मक ही है। इसलिए सर्व वासुदेव सर्वम सर्व ब्रह्म सर्वात्मक ईश्वर और माया से रहित त्रिगुणातीत जो रूप है वही शुद्ध स्वरूप वही एकमेव द्वितीयम। जिस प्रकार सर्वत्र इसे एक अद्वितीय तत्व इसी प्रकार यहाँ विभिन्न प्रकार उपासना करते करते ओम इतेतद अक्षर मुद्गित उपासित कह करके अंत में फिर उसको लेकर के आकाश रूप है प्राण रूप है वही ब्रह्म रूप है पर ब्रह्म स्वरूप है। इसी प्रकार शाम में जो कर्मांग में शाम गान करते हैं जैसे स्तोत्र पाठ श्रवण से लाभ होता है पाठ करने से लाभ होता है उसके अर्थ चिंतन करने से अधिक लाभ होता है, ऐसे शाम गान का भी फल शाम गान श्रवण करने में भी फल। ऐसे वेद पाठी को बुला करके पाठ कराते सुनते हैं, ऐसे जो वेद ठीक पाठ करते हैं कभी कभी आते हैं बोलते तो पाठ करते सब लोग सुनते बहुत सुंदर अच्छा लगता है यदि स्वर के साथ पाठ करते तो। और उसमें भी जो घन पाठ जटा पाठ आदि सीखते है प्रत्येक अवयव एक एक अक्षर को समझ करके पाठ करते है आगे पीछे पूरा शब्द दिखेगा। इसी प्रकार शाम पांच विभाग है, एक उद्गीत उद्गीत आया पांच भाग में मध्यम है उद्गीत एक दो तीन चार पांच भाग है आगे उसके सप्ताह भाग वाले भी कहेंगे तो सात भाग को अलग अलग समझे ऐसे अलग अलग समझ करके अलग अलग दृष्टि से उपासना ऐसे करते करते सर्वात्मक सारे ब्रह्मांड की दृष्टि करके शाम की उपासना वही शाम पर ब्रह्म स्वरूप हो जाएगी। प्रतीक उपासना करते समय कहीं भी प्रतीक से शुरू करते है उसमें ब्रह्म दृष्टि करनी है। इसी प्रकार यहाँ शाम उपासना आरंभ करते हैं किस प्रकार पांच प्रकार आगे सात प्रकार कहेंगे। लोकेशु पंचविधं शाम उपासित पृथ्वी हिंकार अग्नि प्रस्तावंतरिक्षमुद्गीत आदित्य प्रतिहारो देवनिधनम इत्युर्ध्वेषु। लोकेशु पंचविधं शाम उपासित पांच प्रकार शाम उपासना करे। श्रुति में तो आए लोकेशु लोक में ये सब करे किन्तु वस्तुतः यहाँ शाम की उपासना है लोक दृष्टि करके। लोकेश जो सप्तमी दिया है लोक दृष्टि करके शाम की उपासना करे। लोकों में पांच प्रकार शाम है तो शाम की उपासना उपासे शाम उसमें लोक बुद्धि करे। कैसे लोक बुद्धि करे पृथ्वी हिंकार शाम का प्रथम भाग है हिंकार हिंकार मतलब कार वर्णात कार होता है ये शाम एक शब्द आया गान करते समय से हिम ऐसे आवाज शब्द करते हैं जो हिंग ऐसे शब्द करते हैं शाम के प्रथम भाग है उसमें लोक पृथ्वी दृष्टि करे वही पृथ्वी है पृथ्वी दृष्टि करके चिंतन करे। पृथ्वी हिंकार प्रथम है प्राथम्य है यही समानता है। अग्नि ही प्रस्ताव शाम के द्वितीय भाग का नाम है प्रस्ताव प्रथम भाग का नाम क्या है हिंकार द्वितीय है प्रस्ताव और तृतीय का नाम क्या होगा उद्गीत पहला आया है चतुर्थ का नाम है प्रतिहार पंचम का नाम है निधनम ये पांच इसमें आया। तो प्रस्ताव भाग में अग्नि दृष्टि करके उपासना करें प्रस्ताव में अग्नि बुद्धि करें। अग्नि आरंभ करके कर्म प्रारंभ अग्नि में ही कर्म आरंभ किया जाता है इसलिए अग्नि प्रस्ताव रूप प्रस्ताव प्रारंभ किया जाता है प्रस्ताव के भाग है तो अग्नि दृष्टि उसी में करे प्रस्ताव भाग में। उसके बाद अंतरिक्षम उद्गीत उद्गीत नाम को तृतीय भाग उसमें अंतरिक्ष आकाश बुद्धि करे। आगे आदित्य प्रतिहार प्रतिहार चतुर्थ भाग शाम का उसमें आदित्य बुद्धि करे। जैसे अंतरिक्ष में आदित्य उद्गीत के बाद प्रतिहार आदित्य बुद्धि करे, आदित्य बुद्धि से प्रतिहार भाग का चिंतन, देवर निधनम, और निधन है पंचम भाग का नाम, ऐसे निधन का अर्थ मृत्यु कहते, यहाँ निधन के साम भाग का नाम है। तो निधन में देव स्वर्ग बुद्धि करे, देव में निधन कहते क्योंकि इसमें सब कुछ स्थित है, निपुरुक धा स्थापनार्थ निधानम, इसमें सब स्वर्ग जाकर के यहाँ से जो जाते हैं स्वर्ग में स्थित होते हैं, इसे निधन में स्वर्ग बुद्धि करके उपासना करे। इति ऊर्ध्वेषु ऊर्ध्व लोक दृष्टिया सामी की उपासना, साम की उपासना करते समय पृथ्वी दृष्टि करे पहले, द्वितीय में अग्नि बुद्धि करे, फिर आदित्य बुद्धि करे, फिर अंतरिक्ष बुद्धि करे, अंतरिक्ष पहले लग गया प्रस्ताव अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष उद्गीत आदित्य प्रत्याहार अध्ययन निधन, ऐसे बुद्धि करके उपासना साम की किम दृष्टि करके, जैसे प्रतीक उपासना में शालग्राम विष्णु बुद्धिया शालग्रामी की उपासना, इसी प्रकार यहाँ लोक बुद्धि से साम की उपासना। अभी ऊपर गए आगे अथा आवृतेशु द्यौर हिंकार आदित्य प्रस्ताव अंतरिक्ष उद्गीत अग्नि प्रत्याहार पृथ्वी निधनम, विपरीत क्रम से आते हैं। अब यहाँ से पृथ्वी आदि करके गए थे, अब अंत में पहले अंतिम देव बुद्धि क्या था, निधन में स्वर्ग बुद्धि क्या था, जो वापस आएंगे देवर हिंकार, हिंकार में स्वर्ग बुद्धि करे विपरीत, हिंकार में देव, फिर द्वितीय में प्रस्ताव में आदित्य, वहां चतुर्थ में प्रत्याहार में आदित्य बुद्धि, अभी द्वितीय में हो गया आदित्य प्रस्ताव, और तृतीय अंतरिक्षम उद्गीत था, यहां भी वही रहेगा, वापस आएंगे तो तृतीय तो तृतीय में ही, एक दो तीन चार पांच उधर से आएंगे तो तृतीय रहेगा, इसलिए अंतरिक्षम उद्गीत, चतुर्थ अग्नि प्रत्याहार, द्वितीय अग्नि था प्रस्ताव, यहाँ चतुर्थ हो गया प्रत्याहार, प्रत्याहार में अग्नि बुद्धि करे, और अंत में पृथ्वी निधन, निधन नाम के भाग में पृथ्वी बुद्धि करे, ये जाना आना ऐसे होता है, जो इतर आ जाते हैं पृथ्वी में से स्थित होते हैं इसे उसको निधन कहते हैं, यहाँ आगे रहते हैं, ये से जो चिंतन करते पांच भाग हुआ, एक दो तीन चार करे कि साम भाव का ऐसे चिंतन करे, ऐसे करने से क्या लाभ होगा, आगे फल कथन करते हैं, उपासना का फल, कल्पन्ते हास्मे लोका ऊर्ध्वाश्चावृताश्च ये एतदेव विद्वान लोकेषु पंचविधम सामोपास्ते, कल्पन्ते क्लिप सामर्थ्य, समर्थ होते हैं उसको प्राप्त होते हैं, अस्मे लोका सारे लोग उसको प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते मतलब लोग तो सबको प्राप्त है, पशु पक्षी को भी प्राप्त है, जो दुख भोगता उसको भी प्राप्त है, किन्तु यहाँ प्राप्त होते मतलब भोग्यत्व उपस्थित होते हैं, उसमें ये लोक में भोग करता है, सुख से रहता है। ऊर्ध्वाश्च आवृताश्च इसे ऊपर नीचे जितने सब गत्यागति विशिष्ट भोग्य होते हैं, जो इसे विद्वान उपासना करके पांच प्रकार साम की उपासना करता है, लोक बुद्धि करके साधु साम उपासना करता है, उसे पांच प्रकार दृष्टि करके उपासना करता है, इसे सर्वत्र इसी प्रकार आगे सप्तविध भी कहेंगे। अभी आगे दूसरा है साम उपासना, बृष्टो पंचविधम साम उपासित पुरोवातो हिंकारो मेघो जायते स प्रस्तावो वर्षति स उद्गीतो विद्युतते स्तनयति स प्रतिहार उद्गृणाति तन्निधनम्। वृष्टि बुद्धि करके साम की उपासना, सर्वत्र साम उपास्य है, साम में अलग दृष्टि करके उपासना करे, तो पहले लोक बुद्धि करके अभी वृष्टि दृष्टि करे, वृष्टि दृष्टि करके साम की उपासना, तो क्योंकि लोक दृष्टि के अनंतर अभी वृष्टि है, वृष्टि होने पर लोक की स्थिति होती, वृष्टि होने पर अन्न आदि होता है, तो लोग अन्न आदि भक्षण करते है, अन्नरस आदि से जीवन धारण करते है, पिंड आदि दान करते है, हवि प्रदान करते है, स्वर्ग आदि की स्थिति होती, तो पहले वृष्टि होने पर लोक स्थित हो तब सारे लोक की स्थिति, प्राणी कर्म करेंगे कर्म से स्थित होता है, धर्म सारे ब्रह्मांड को रक्षा करने वाला, धर्म फिर कैसे होगा, प्राणी अनुष्ठान करेंगे तो धर्म होगा, शास्त्र विहित कर्म करेंगे तो धर्म होगा, वही धर्म धरतेति धर्म, जो धारण करने वाला धर अध्रियतेति धर्म, धारण किया जाते भी हो, धर्म सब की रक्षा करने वाले और धर्म ही धारण किया जाता है, धारण किया जाता है क्या अर्थ है, कोई सिर में धारण किया, थोड़ी देर धारण करने के बाद गिरा दिया वो धारण नहीं कर पाया। धारण करता है मतलब जब तक चाहे रखा, जब चाहे उसको निकाल लिया, लेकर कुछ पकड़ा दिया, पकड़ा फिर लेकर जहां रखा वहां रख दिया, तो धारण किया गया। अपनी इच्छा से धारण करे, जब चाहे हटाए तो धारण करता है। थोड़ी देर गिर पड़ा, नहीं रख पाए तो धारण नहीं कर पाया। गिरिधारी भगवान श्री कृष्ण को कहते, पत्थर को उठा दिए, अब बीच में छोड़ देते तो सबको बुला दिया आ जाओ, अब पत्थर पर्वत गोवर्धन छोड़ देते बीच में, तो कोई उनको गिरिधारी कहता? थोड़ी देर धारण किया, उनसे धारण कर रखा जब तक चाहे, उसके बाद सबको हटा करके फिर रख दिया। इसी प्रकार धर्म ही धारण किया जाता है। कोई जाता है, रखता है धन संपत्ति, हीरे लगा करके मुकुट पहने जाते समय क्या लेकर जाएगा? कुछ नहीं। जितने हो मुकुट है सर, धन संपत्ति जितने हो, कुछ धारणा करके नहीं ले जाता है। तो धारण का क्या किया? जब जाते समय नहीं ले पाए तो छोड़कर क्या, तो धारण क्या? धारण तो ही करता है जो लेकर जाता है, रखता है। क्या धारण करके जाता है? धर्म ही धारण किया जाता है, जिसको कोई हटा नहीं सकता है। मर जाता है, गिर गया, अस्वस्थ हो गया, तो भी कोई ऊपर से गिरा नहीं, मुकुटा तो गिर जाता है, नहीं गिरने पर भी हटा कर ले लेंगे। अलंकार भूषण कोई रखा गया है, अपने आप नहीं गिरता तो बंधु लोग छोड़ते नहीं, अलंकार को सोना चांदी हीरे आदि को हटा ले निकाल लेते हैं। किंतु धर्म को कोई नहीं सकता, हटा सकता है ना, चोर ले सकता है ना, असत होने पर गिर जाएगा या अपने नहीं चाहेगा, ऐसा नहीं। धर्म को लेकर जाना पड़ता है, इसलिए ध्रियते अर्थात धारण किया जाता है, इसलिए इसका नाम धर्म। धारण करता है इसलिए हो गया धर्म, जगत का धारण करता है, जगत स्थित रहता है धर्म से। अधर्म पाप भी करते हैं बहुत, किंतु अधर्म भी है। अभी इस समय जितने लोग आए हैं अपने पुण्य पाप लेकर के आए, जो पुण्य लेकर के आए वो धर्म, किसी जन्म कितने जन्म पहले, हजार जन्म करोड़ों जन्म पहले कोई क्या कर किया था, अभी प्रारब्ध लेकर के आए। जो धर्म अधर्म लेकर के आए, यही धर्म अधर्म प्राणियों का धर्म अधर्म ब्रह्मांड को रखा है। जब तक प्राणियों का धर्म है तब तक उनको भोग करने के लिए ऐसा रहेगा, धर्म अधर्म समाप्त होगा तो प्रलय हो जाएगा। यही धर्म धारण करने वाला संसार की सृष्टि और प्रलय प्राणियों के अदृष्ट से ही परमात्मा करते हैं। प्राणी कर्म फल देने के समय हुआ, भगवान सृष्टि करते हैं, और सब प्राणी अपने कर्म से भोग करेंगे। और कर्म ऐसे कुछ कर्म रहता है एक जन्म के दूसरा जन्म से भोगते भोगते होते समाप्त हो जाता है, जैसे सुषुप्ति अवस्था में कर्म फल भोग नहीं होता है, जागृत स्वप्न में कर्म फल भोग हुआ वो समाप्त हो गया सुषुप्ति, फिर कर्म तैयार हो गया फिर उठना पड़ता है, उठ जाना पड़ता है। इसी प्रकार समाप्त हो जाएगा कर्म प्रलय, फिर कर्म तैयार हो गए फल देने के लिए, फिर सृष्टि। तो संसार का धारण धर्म ही करता है, इसलिए धर्म से धारण होता है। जो इसे उपासना करता है तो सबका धारण कर रखता है। तो यहाँ पृथ्वी में कर्म करते हैं, कर्म करने पर धर्म होता है, अन्न से वृष्टि होने पर अन्न होता है, अन्न भक्षण करते हैं, अन्न से पुरुडा शादी बनाकर यज्ञ करते हैं और देवताओं को अर्पण करते हैं, धर्म होता है। धर्म से सुधारण किया जाता है, इसे वृष्टि लोक दृष्टि के बाद वृष्टि दृष्टि करते हैं, क्योंकि लोक की स्थिति वृष्टि के निमित्त, वृष्टि वर्षा होने पर अन्न आदि होता है, उससे लोक की स्थिति। वर्षा नहीं होने पर अन्न आदि तो नहीं होता है, कितने स्थान में पानी सूख जाता है तो लोग मर जाते हैं, ऐसे बहुत स्थान में पानी का भी अभाव हो जाता है। तो वृष्टि दृष्टि करके ये उपासना करने के लिए कहते हैं। पूर्ववात हिंकार, साम के प्रथम भाग हिंकार में पूर्ववात, पूर्ववात है वृष्टि होने के पहले वायु आदि चलता है, पूर्ववात प्रथम होता है। उसके बाद मेघो जायते स प्रस्ताव, साम के द्वितीय भाग प्रस्ताव में मेघ बुद्धिकर मेघ उत्पन्न होता है, क्योंकि जब वर्षा ऋतु में पहले वायु पूर्व दिशा में इधर उधर चलने पर फिर मेघ उत्पन्न आता है, मेघ आने के बाद वर्षा होगा। मेघ जायते सब प्रस्ताव, प्रस्ताव प्रारंभ किया जाता है, फिर वर्षति स उद्गित, और जब वर्षा होती उसका नाम उद्गित, श्रेष्ठ है उद्गित वृष्टि। वृष्टि के पहले से पूर्ववात होता है, फिर वायु मेघ होता है तो वर्षा होती। और कभी विद्युत स्तनयति सब प्रत्याहार, विद्युत जो है विद्युत होता है, मेघ स्तनयते गर्जन होता है, हो गया सब प्रत्याहार। उसका उद्गृहणाती, फिर वर्षा समाप्त हो जाने पर ग्रहण कर लिया, ले लिया जल को रख दिया, वर्षा बंद हो जाती तन निधनम। इसी प्रकार पांच प्रकार दृष्टि करके वृष्टि दृष्टि से शाम की उपासना, इसका फल कहते वर्षतिहास में वर्षे तिहाय एतदेव विद्वान वृष्टु पंचविदम शाम उपास्ते। ऐसी प्रकार शाम में वृष्टि दृष्टि करके उपासना करता है, उपासना इतने मंत्र जप का भी फल है, किंतु खाली थोड़े मंत्र थोड़े जप कर दिया इतने नहीं होता है, मंत्र सिद्धि करनी पड़ती है। मंत्र सिद्ध करने से जो विशेष फल प्राप्त होता है, कितने जप करे, कितने एकाग्र करे, एकाग्र से जप करे, इष्ट देवता उसमें प्रसन्न हो जाए, तो मंत्र सिद्ध होने पर फल प्राप्त होता है। उपासना का भी ऐसे उपासना करते करते एकदम तन्मय हो जाए, उपासना का फल प्राप्त होता है। और बहुत नहीं हो पाता है तो भी, जैसे भगवान का ध्यान करते हैं, ध्यान करके बिल्कुल तन्मय हो जाए तो परमात्मा प्रकट होंगे, फल देंगे, प्रसन्न होंगे, तो ठीक है। किंतु पूरा नहीं हो पाता, थोड़े थोड़े करते, सब लोग ध्यान भजन करते हैं, पूरा भगवान का दर्शन तो नहीं कर पाते, किंतु व्यर्थ नहीं होता है। ऐसे थोड़ा चिंतन करते, थोड़े नाम लेते, थोड़ा जप करते, तो भी उसका फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो अत्यधिक उपासना करके कर सकते हैं वो फल प्राप्त कर लेते हैं, और बहुत अधिक नहीं कर पाते, थोड़े थोड़े करते थे, थोड़े थोड़े परमात्मा की प्रसन्नता होती है। अब कितने जन्म के ऐसे धर्म भक्ति मिल करके फिर परमात्मा की प्रसन्नता से फिर अंतकरण की शुद्धि, उत्कृष्ट जन्म की प्राप्ति, फिर वैराग्य ज्ञान आदि प्राप्त होता है। जो इस प्रकार उपासना करता है उसमें तन्मय होकर उपासना करता है, अच्छे जो एकाग्र होकर उपासना कर सकते हैं उनमें यह सामर्थ्य आता है। वर्षते अस्मै, इसके लिए इच्छा से वृष्टि हो जाती है। वर्षति हय और वृष्टि कराता है, मेघ नहीं होने पर ही वृष्टि कराता है। यह एतदेव विद्वान वृष्टु पंचविधम शाम उपासते, इसे जान करके वृष्टि दृष्टि करके पांच प्रकार शाम उपासना करता है तो वृष्टि कराता है, मेघ नहीं होने पर भी वृष्टि करा देता है। यही कला शासन के विष्णु देवानंद गिरिजी महाराज और के थे चैतन्य गिरिजी महाराज अष्टम पीठाधीश्वर थे, विष्णु देवानंद गिरिजी षष्ठ थे, वो षष्ठ पीठाधीश्वर वहां फलौदी में राजस्थान में एक स्थान है, वहां चातुर्मासे कर रहे थे। वहां राजस्थान में वर्षा नहीं होती तो लोगों ने कहा थोड़ा कुछ कृपा कर दिए, वर्षा हो जाए लगातार चातुर्मास बहुत दिन रह गई, चातुर्मास से सत्रह अधिक समय रह गई, ऐसे रह गए। बड़े बड़े विद्वान कला शासन में होते थे, वो बाहर जाकर रहे तो यहां पठन पाठन ठीक चलता है, वहां रह गए बहुत दिन, अच्छा उनको लगातार रह गए। तो सब लोगों ने इतनी प्रार्थना की वर्षा करा वर्षा करो, बोले अच्छा कराते हैं, कुछ अनुष्ठान किया। ऐसा अनुष्ठान करने के बाद सब महाराज जी कहते जल्दी प्रसाद पाकर आप लोग चले जाओ, बहुत जोर वर्षा होने वाली, जल्दी चले जाओ। लोग को आप कुछ नहीं बोल पाते हैं, कहीं भी कुछ बादल नहीं दिखता है और कहा वर्षा होगी, तभी कुछ लोग तो जल्दी कहे महाराज जी कहते हैं, और महाराज जी ऐसा नहीं कहेंगे, बस जल्दी जल्दी प्रसाद पाकर चले जाओ, जोर वर्षा होने वाली, बहुत जोर वर्षा होगी, बहुत पानी, ऐसे कहते रहते। महाराज कुछ लोग चले गए, कुछ लोग रह भी गए। वो स्थान अभी मैंने देखा था, वो नाला कहते, अब नाला जैसे अभी अन्य समय जाओ तो पता नहीं चलता नाला करके, ऐसे रहते रहते है रास्ता ऊपर बन गया, वहां पानी इतने आ गया लोग इस पार से उस पार नहीं जा पाए, बहुत वर्षा हुई। वो लोग जो उस समय थे अभी भी है, यहां भी एक आई थी तीन चार पांच सात दिन पहले महिला, और वहां फलूदे हम गए थे, वहां पुराने बूढ़े कोई कोई बताते वो हम थे, हम देखे, और उस समय वर्षा इतने अधिक हो गई तो सब लोग उसको अभी भूल नहीं पाते, आगे जो लोग नहीं देखे उनको सुन करके मानते हैं। और एक तालाब में पानी नहीं रहता था, सूख जाता था, वहां कुछ तीर्थ के जल लेकर के रह करके कुछ उपासना करके किया तभी से वो तालाब में पानी रहता, अभी भी तालाब है, पानी सूखता नहीं। अभी ऐसे पानी कम होने पर कुछ पानी ला करके पाइप कहां ला करके इसमें मिला देते हैं, किन्तु अभी देखा कि तब से वो सूखा नहीं। अब वर्षा जो हुई है प्रामाणिक है, ये कहते उन्होंने यही वृष्टि दृष्टि करके उपासना की थी, करके उपासना करे, बड़े सिद्ध महापुरुष थे, उधर इसे उपासना करने लग गए, सब लोगों को कहा, कारण से उनके इसे कृपा हो गई, सामर्थ्य था, उपासना करने लगे तो वर्षा होगी, वर्षा हुई तो बहुत जोर से वर्षा हुई थी करे, तब से वहां के फलोदी में ब्राह्मण लोग बहुत है, तब से कला शासन सा संबंध, हम भी दो बार गए हैं, ऐसे बुलाते आते जाते संबंध है, बहुत लोग बहुत मानते हैं। तो ऐसे उपासना करके जो तन्मय होकर उपासना करे तो फल प्राप्त होता है, और बाकी जो इसे पूरा नहीं कर पाते हैं अथवा फल नहीं चाहते उनका उपासना व्यर्थ नहीं होता है। फल प्राप्त वृष्टि नहीं कर पाए, सिद्ध नहीं पाए तो कुछ करते हैं तो परमात्मा की कृपा होती है, और जो नहीं चाहता है फल उसको सारे उपासना का फल ये उपनिषद में जो आए उपासना सब अंतकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का साधन है, ये मुख्य फल है। और बाकी जो इसे करता है फल प्राप्त होता है। सर्वास्वप्सु पंचविधम साम उपासित मेघो यत संप्लवते स हिंकारो यद वर्षति स प्रस्तावो या प्राच्य संदते स उद्गीतो या प्रतीच्य स प्रतिहार समुद्रो निधनम। वर्षा में वर्षासु अपसु वर्षा में जल में जल दृष्टिया वर्षा जल दृष्टिया पांच प्रकार शाम वृष्टि होगी उसके बाद जल भर गई जल दृष्टिया शाम की उपासना। फिर मेघो यत संप्लवते मेघ संप्लवते तो इकट्ठी होते घनीभूत होता है आगे वर्षा होने के लिए स हिंकार यद वर्षति स प्रस्ताव या प्राच्य संदते पूर्व दिशा में बहने वाले नदी है प्राच्य संदते वो श्रेष्ठ हो गया संदते स उद्गीत या प्रतीच्य प्रति पश्चिम दिशा में जाने वाले ये प्रतिहार फिर नदी जाकर के पूर्व दिशा में पश्चिम दिशा में बह करके कहाँ मिलेंगे समुद्र में समुद्र निधनम। न हाप सुप्रेत्यपसुमान भवति यदेव विद्वान सर्वास्वप्सु पंचविधम सामोपास उपास्ते। इसका फल हुआ अपसु न प्रेति जल में कभी वन्या से मर जाते हैं कभी स्नान करते समय कोई मर जाता है कभी कभी ऐसे होता है जल में तो यहाँ ऐसे उपासना करने वाले अपसु न प्रेति मरे या नहीं अपसुमान भवती और जल पर्याप्त हमेशा प्राप्त करेगा जल का अभाव उसको कभी नहीं होगा। ऐसे धीरे धीरे अभी सब जल व्यवस्था है कभी समय था अभी भी कुछ समय कहीं है और बहुत समय में वर्षा नहीं होने पर इतने अभाव हो जाते पानी पीने के नहीं मिलता दूर दूर से लोग पानी के लिए जाकर लाइन लगा अभी भी कहीं कहीं होता है घड़े लेकर बर्तन लेकर लाइन में खड़े होते पाइप में कभी पानी आएगा। अब यह भी कुछ सुना था कहीं किसी द्वीप में पानी अभाव तो जहां समुद्र में है कि बताया कभी अभी 15 दिन के अंदर कि समुद्र में बनने आदि हो जाने से वहां नमक के पानी को शुद्ध करके पीते हैं अन्य पानी नहीं मिलता है तो भारत से उनको भेजा गया कोई अंडमान आदि होगा अंडमान ऐसे कुछ द्वीप में तो पानी अभाव होता है तो वहां पानी पीने नहीं मिलता तो कितने अभाव समुद्र पानी भरा हुआ है किन्तु उसको नहीं पिए उसको पीने के लिए कुछ करके फिल्टर करके निकाल कर पी सकते नहीं पी सकते तो अभाव होता है तो फिर कितने पानी के अभाव से लोग मर जाते हैं पशु बहुत पशु पक्षी मर जाते पशु मर जाते हैं तो ऐसे होता है जल ये एक फल बताया इस उपासना करने वाले जल अभाव नहीं होगा जल में मरेगा नहीं। और ये सब तो अंतरंग सामान्य फल है मुख्य फल ये नहीं है सारे कर्म उपासना का पहले बताया था सबका मुख्य फल है अंतकोण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का। जिस प्रकार लोक उपासना करते भक्ति करते हैं स्मार्त उपासना लोक प्रसिद्ध है ये श्रौत उपासना जो करते हैं ऐसे जो जानकर करते इसका फल प्राप्त करते हैं और ज्यादा नहीं जैसे तीर्थाटन करते हैं मंदिर दर्शन करने के जाते हैं कभी कभी मिल करके बहुत लोग मिल करके स्पेशल ट्रेन करके गाड़ी लेकर जाते हैं तीर्थाटन करते 15 दिन महीना में घूम घूम करके दर्शन करे आते हैं 15 दिन महीना एक स्थान में बैठ करके आप जप ध्यान करो जितने एकाग्र होता है एक महीना बाहर घूम घूम कर आए पर इसे ध्यान भजन होता नहीं होता है किंतु विभिन्न तीर्थों का दर्शन होता है मंदिर में विभिन्न स्थान दर्शन करके प्रणाम करके आते पूजा आदि करके आते हैं तो एक बार दर्शन करने पर पूजा करके आते हैं तो उसका भी लाभ होता है उसके आगे उसका चिंतन स्मरण करते कभी उसके बारे में पढ़ते पुराण आदि पढ़ते तो दर्शन किया तो कुछ विशेष उसमें संस्कार होता है तो लाभ होता है। इसी प्रकार जो अधिक उपासना करे तो अधिक फल प्राप्त करेगा और एक बार दर्शन कर लिया एक बार प्रणाम कर लिया तो व्यर्थ हो गया नहीं। इसे लोग तीर्थाटन कर जाते हैं तो बार बार सो नहीं कोई लोग बार बार करते हैं कोई नहीं कर पाते हैं। हम अमरनाथ गए थे एक लड़का 12-14 साल का उम्रता में 5 साल से प्रतिवर्ष आता हूं उसका ऐसे हो गया अकेले आकर बड़ा आता है चलता अच्छा हमें आता हूं। और कोई कई लोग कहते हम कितने साल से आते हैं प्रतिवर्ष जाते हैं जिनके ऐसे हो जाता है वो करते कुछ लोग ऐसे ही मिलते हैं प्रतिवर्ष जाते हैं कोई एक बार जा सकता है कोई नहीं भी जाते हैं कोई समर्थ होकर संपन्न होकर नहीं कर पाते है। कितने लोग है वहां ऋषि के तरह जाते हैं, बद्रीनाथ का दर्शन नहीं किया हुआ, बहुत लोग है, समर्थ है, गाड़ी आदि है, व्यवस्था है, सब जाते हैं, भक्त दिल्ली से जाते हैं, किन्तु वहां तक जाकर के आगे कभी नहीं जा पाते, ऐसा भी होता है। और करने वाले पद यात्रा करके दर्शन करते हैं, तो कोई बार बार दर्शन करते हैं, और सब तीर्थ का दर्शन कोई बार बार नहीं कर सकता है, तो एक बार भी दर्शन करते हैं, एक बार प्रणाम करते हैं, एक बार तो उसका भी फल मिलता है। इसी प्रकार उपासना का अधिक करे तो अच्छा है, थोड़े किया अभी समझा, अभी कभी कभी उसके संस्कृत अर्थ नहीं समझ आए तो हिंदी अर्थ पढ़ ले, पढ़कर थोड़े चिंतन कर ले, कैसे कैसे उपासना, किस में क्या दृष्टि करनी, ऐसे चिंतन करते ही उपासना हो जाता है। अरे उपासना ही फल देने वाले, श्रद्धा विश्वास चाहिए। जो लोग श्रद्धा विश्वास नहीं करते हैं, वो लोग मूर्ति पूजा का भी खंडन करते हैं, कहते हैं पत्थर है,